समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात, न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में आप सभी को फहरनास का नमस्कार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, याद करेंगे कुछ मशहूर हस्तियों को और जानेंगे कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल। आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी रेणु कटारिया। नमस्कार रेणु।
नमस्कार फरहत, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। डियर लिसनर्स, फरहत हैज ऑलरेडी अपडेटेड यू ऑन द program that we are going to have and what all we are going to be giving you in this half an hour, and there is going to be also some historical information that we are going to share with you on which is going to be related to this day, that is the 24th of April 2024. So, Farhat bhai, don't we begin with the headlines first?
धन्यवाद रेणु। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबर से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान होगा।
Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi will be on a tour of Madhya Pradesh today. After public meetings in Sagar and Harda, he will hold a roadshow in Bhopal. Meanwhile, in the second phase of Lok Sabha elections, voting will be held in 6 Lok Sabha constituencies of Madhya Pradesh on 26th April. Election campaigning will end in these areas from 6 p.m. today.
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी सहित लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने कल चुनावी सभाएं की। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने गौतम बुद्ध नगर में एक रैली में कहा कि नोएडा, जो कभी भ्रष्टाचार का केंद्र माना जाता था, वो अब एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन चुका है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में लोगों से नफरत फैलाने वालों के खिलाफ वोट करने की अपील की। बसपा प्रमुख मायावती ने मेरठ में एक जनसभा में कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाएगा।
सीनियर बीजेपी लीडर एंड यूनियन मिनिस्टर अमित शाह विल एड्रेस अ रैली इन फेवर ऑफ बीजेपी कैंडिडेट एंड सिटिंग एमपी नवनीत राणा दिस आफ्टरनून इन अमरावती सिटी। मीनवाइल सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी विल ऑल्सो एड्रेस एन इलेक्शन रैली एट पराटवाडा इन अमरावती डिस्ट्रिक्ट दिस आफ्टरनून। कांग्रेस कैंडिडेट बलवंत वानखड़े इज कंटेस्टिंग अमरावती लोकसभा सीट फॉर द फर्स्ट टाइम। टोटल ऑफ 37 कैंडिडेट्स are in the fray for Amravati constituency, which is reserved for scheduled caste. Grandson of Dr. Baba Sahib Ambedkar, Anand Raj Ambedkar, is also contesting this seat and is supported by the Vanchit Bahujan Aghadi. BSP has also fielded Sanjay Gadge as a candidate. This constituency will go to poll on 26th of this month.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे आज देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में भारतीय वन सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। संस्थान के 2022-24 कोर्स के 99 परिवीक्षाधीन अधिकारियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में स्नातक की डिग्री दी जाएगी। इनमें भूटान के 2 प्रशिक्षु अधिकारी भी शामिल हैं। मौजूदा बैच में मध्य प्रदेश के सबसे अधिक 15 और उत्तराखंड के 3 अधिकारी शामिल हैं।
The Chief of Army Staff, General Manoj Pandey, said that the Army's vision for the future is to transform into a modern, agile, adaptive, technology-enabled and self-reliant future-ready force. He said the transformation roadmap entailed 5 pillars, namely force, restructuring and optimization, modernization and technology infusion, improvement of systems, human resource management and promoting jointness and integration with the sister services. He was speaking at session on hard power, modernizing forces through self-reliance at a function in New Delhi. General Manoj Pandey said that the army is shaping hard power capabilities through self-reliance in the defense manufacturing sector.
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत का विश्वास है कि सशक्त दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। आसियान फ्यूचर फोरम के पहले संस्करण को वर्चुअली संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत की हिंद प्रशांत महासागर की पहल और इस क्षेत्र पर आसियान देशों का समन्वय व्यापक सुरक्षा चुनौतियों के लिए मजबूत तंत्र प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आसियान भारत की पर्वोन्मुखी नीति के केंद्र में है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
Defense Research and Development Organization, DRDO, has successfully developed the lightest bulletproof jacket in the country for protection against highest threat level 6 of BIS ammunition. Recently, this bulletproof jacket was successfully tested at TBRL Chandigarh. Ministry of Defense in a statement said that this jacket is based upon new design approach where novel material along with new processes have been used. It added that the front hard armor panel or HAP of this jacket defeats multiple hits. The ergonomically designed front HAP is made up of monolithic ceramic plate with polymer backing, which enhances the wearability and comfort during the operation. Secretary Department of Defense Research and Development and Chairman DRDO Dr. Sameer V. Kamath has congratulated Defense Materials and Stores Research and Development Establishment of DRDO for the successful development of this lightest bulletproof jacket for protection against highest threat level.
मौसम विभाग ने इस महीने की 29 तारीख तक देश के उत्तर पूर्वी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक उप हिमालय पश्चिम बंगाल उड़ीसा और सिक्किम में वर्षा होने का अनुमान जताया है। अगले तीन दिनों में मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश आंधी और बिजली गिरने की संभावना है।
And moving on to sports, Archery World Cup 2024 began in Shanghai, China yesterday. The Indian women's team comprising top three scorers Vinam, Swami and Parneet finished as the best in the qualification round with a total score of 2,118. The team will thus start as the top seeds in the competition above South Korea and Mexico. In the men's compound qualification round, no Indian finished in the top 10 of the individual event.
ने विश्व एथलेटिक्स रिले 2024 टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्य रिले टीम की घोषणा कर दी है। आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग इवेंट के तौर पर यह प्रतियोगिता 4 से 5 मई तक बहामास के नसाओ में होगी। तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय समाचार और अब रुख कर लेते हैं महानगरों का।
यस फरहत, लेट्स बिगिन विद चेन्नई मेट्रो फर्स्ट। An Armenian art exhibition featuring 18 works of the Armenian artist, designer and entrepreneur settled in Chennai was held yesterday. The famed Garni Temple, the only pre-Christian relic in Armenia, hidden monasteries in mountain sides in full bloom and a duduk on a red carpet with a snowy mountain as the backdrop was shown. Mari Pogoishyan's paintings are an attempt to showcase Armenian architecture, history and heritage. The date marks the 109th commemoration of the Armenian genocide. The artist said that the exhibition is to showcase the cultural resilience of Armenia and raise awareness about the preservation of the country's historical monuments. The painting with the statue of a mother holding a baby represents Armenia rising from its ashes. More news from Chennai Metro. Anna University's Center for Entrepreneurship Development is organizing a startup conclave program this weekend. The flagship event will enable the academic community, colleges, government departments, investors, startups, incubators, industry associations, and others will integrate and work towards the benefit of the students and the student-turned-entrepreneurs. Apart from seminars on startup opportunities, challenges in entrepreneurship and digital marketing, the CED will organize the business plan competitions, startup idea pitching events for school students and related workshops. Moving on to Bengaluru Metro. The Chief Electoral Office in Karnataka has organized a state-level photography competition on the Festival of Democracy reflected in the general election for the Lok Sabha. Both the photojournalist and amateur photographers taking the best photographs of the election to be held on April 26th and May 7th in Karnataka will be awarded with the cash prizes. During the 2019 general elections, the competition was held and the best photographs selected by the commission were used for its publications. Hence, the competition is being rearranged during this election. Those desiring to participate in the photo competition have to send 5 of the best photographs taken during the election days and send it to the Department of Information and Public Relations, Government of Karnataka with catchy captions. The photographs have to be sent with personal details to mediacellcokarnataka@gmail.com before May 15th. There are 5 cash prizes announced for the best photographs totaling to a sum of Rs. 61,000. And the last news that I have is from Hyderabad Metro. In Telangana, a total 191 nomination sets have been received in all 17 Lok Sabha constituencies in the state yesterday. BJP candidates B.B. Patil from Zahirabad, Dr. Narsaya Bura from Bungir, and Vinod Rao Tandra from Khammam filed the nominations yesterday. Congress candidates G. Ranjit Reddy from Chevella, Dr. Mallu Ravi from Nagar Kurnool, R. Raghuram Reddy from Khammam were among them who filed nominations. From BRS, Atram Saku from Adilabad, R. Lakshma Reddy from Malkajgiri, K. Gyaneshwar from Chevella and K. Krishna Reddy from Nalagonda were among those who filed nominations yesterday. Union Minister Dr. S. Jayashankar took part in the nomination rally held by the BJP candidate in Bhongi. The nominations will be received today and tomorrow. Meanwhile, Union Minister and BJP senior leader Anurag Singh Thakur will be taking part in the nomination rally of party Hyderabad candidate later today. Polling for all 17 Lok Sabha constituencies in Telangana will be held on the 13th of next month. Moving on to you, Farhat, what do we have from Delhi, Mumbai and Kolkata metros?
जी रेनू, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर से। कल शाम राजधानी दिल्ली में अचानक मौसम में बदलाव आया और कई हिस्सों में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो खराब मौसम के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 15 विमानों को डायवर्ट किया गया। इन विमानों में 9 जयपुर की, 2 अमृतसर की और 2 लखनऊ और एक एक को मुंबई और चंडीगढ़ के लिए डायवर्ट किया गया। वहीं रेलवे ने गर्मी के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए किफायती खाना उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उत्तर रेलवे ने बताया है कि सामान्य श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर उनके कोच के बाहर ही किफायती दाम पर खाना और अन्य फूड उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि यात्रियों को गर्मी में कोई दिक्कत न हो। और अब आगे बढ़ते मुंबई की ओर रुख करते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मुंबई उपनगर के कलेक्टर ने 550 से अधिक टीमों का गठन किया है जो आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 2400 घंटे काम कर रही हैं। इनमें वीडियो निगरानी, उड़न दस्ते और जमीनी स्तर के निगरानी दस्ते भी शामिल हैं। कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल में पिछले एक सप्ताह से भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर बंगाल में भी गर्म और उमस भरा मौसम है। थाईलैंड में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ दशकों से पश्चिम बंगाल में तापमान 0.5 से 1 डिग्री तक बढ़ जाता है। सुंदरबन में समुद्र का स्तर बढ़कर 4.44 किलोमीटर हो गया है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो 2080 तक पश्चिम बंगाल के सभी शहरों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होगा और दार्जिलिंग के तापमान में वृद्धि की दर नई दिल्ली से भी अधिक होगी। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महानगरों की खबरें और अब रुख कर लेते हैं इन्हीं महानगरों के मौसम का। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। तो कल शाम तक तेज हवाएं और बारिश चलने की संभावना व्यक्त की गई है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई की बात करें तो वहां पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया है जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। लेकिन कोलकाता में गर्मी का प्रकोप रहेगा। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया है जबकि अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।
एंड चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर इज 28 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 37 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव मेनली क्लियर स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर इज 23 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ रेन और थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म। द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 25 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 38 डिग्री सेल्सियस।
और श्रोताओं, आज है 24 अप्रैल 2024, तो आइए आज के इतिहास की हम बात कर लेते हैं। 1877 में आज ही के दिन रूस ने 24 अप्रैल को ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की थी।
एंड इन 1331 ऑन दिस डे जनरल मलिक कफूर रिटर्न्स टू दिल्ली आफ्टर कैंपेन इन साउथ इंडिया। In 1929, on 24th of April, the first non-stop flight from England takes off to India.
1915 में जर्मनी की सेना ने बेल्जियम के फ्लेमिस प्रांत के आयकर क्षेत्र में क्लोरोफॉर्म गैस छोड़ी।
In 1932, 400 people were seized by British for defying ban on Indian National Congress.
इसके साथ ही 1954 में ऑस्ट्रेलिया और सोवियत संघ ने राजनयिक संबंध आज के दिन समाप्त किए।
एंड ऑन दिस डे दैट इज 24 अप्रैल 1959 नेहरू मीट्स द एग्जाइल दलाई लामा इन मसूरी एंड इन 1965 द कोसी बराज वॉज इनॉग्रेटेड बाय किंग महिंद्रा ऑफ नेपाल।
1998 में भारतीय क्रिकेट टीम ने शारजा में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर कोका कोला कप जीता।
इन 1995 के करुणाकरन वॉज इलेक्टेड टू द राज्यसभा एंड इन 1996 द इंडियन एक्सप्रेस लॉन्चेस वाइजैक 17th एडिशन।
और 1960 में एक दुखद घटना हुई, दक्षिण पर्सिया में आए भयंकर भूकंप में 500 लोगों की मृत्यु आज ही के दिन हुई थी। और अब आगे बढ़ते हैं, याद करते हैं कुछ मशहूर हस्तियों को। आज सबसे पहले हम जिनको याद कर रहे हैं जिनका आज जन्मदिन है, छत्तीसगढ़ राज्य की पहली महिला कलाकार जिन्हें कहा जाता है, जो पंडवानी की कापालिक शैली की गायिका हैं। तीजनबाई ने अपनी कला का प्रदर्शन अपने देश में ही बल्कि विदेश में भी किया, जिसके लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तीजनबाई ने अपना जीवन का पहला कार्यक्रम सिर्फ 13 साल की उम्र में दुर्ग जिले के चंदखुरी गांव में किया था।
श्री कृष्ण जी अर्जुन के बाप के ध्यान लगावा दबा कर
बचपन में तीजनबाई अपने नाना ब्रजलाल को महाभारत की कहानियां गाते हुए सुनती और देखती थी और धीरे धीरे उन्हें ये कहानियां याद होने लगी। अनेक पुरस्कारों द्वारा पुरस्कृत तीजनबाई मंच पर सम्मोहित करने वाले अद्भुत नृत्य नाट्य का प्रदर्शन करती हैं। नाट्य का प्रारंभ होते ही पात्र के अनुसार उनका सज्जित तानपुरा भिन्न भिन्न रूपों का अवतार लेता है। तीजनबाई की विशेष प्रभावशाली लोक नाट्य के अनुरूप आवाज, अभिनय, नृत्य और संवाद उनकी कला के विशेष अंग हैं।
And today is the birthday of Sachin Tendulkar, who is an Indian former international cricketer who captained the Indian national team. He is widely regarded as one of the greatest batsmen in the history of cricket. Hailed as the world's most prolific batsman of all time, he is the all-time highest run scorer in both ODI and Test cricket with more than 18,000 runs and 15,000 runs respectively. He also holds the record for receiving the most player of the match awards in international cricket. Tendulkar was a member of Parliament, Rajya Sabha by nomination from 2012 to 2018. Tendulkar has received several awards from the Government of India, the Arjuna Award in 1994, the Khel Ratna Award 1997, the Padma Shri 1998 and the Padma Vibhushan in 2008. After Tendulkar played his last match in November 2013, the Prime Minister's office announced the decision to award him the Bharat Ratna, India's highest civilian award. He was the first sportsperson to receive the reward and as of 2023 is the youngest recipient. In 2010, Time included Tendulkar in its annual list of the most influential people in the world. Tendulkar was awarded the Sir Garfield Sobers Trophy for Cricket of the Year at the 2010 International Cricket Council or ICC Awards.
और अब हम याद कर रहे हैं भारतीय फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने 200 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। करीब 6.5 दशक पहले उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं शम्मी की, जिनका आज जन्म हुआ था। शुरुआती दौर में कई फिल्मों में नायिका और सहनायिका के तौर पर नजर आने के बाद उन्होंने चरित्र भूमिकाओं की ओर रुख किया। इस लंबे अंतराल में उनका अभिनय जो है किसी भी विराम के लगातार जारी रहा। यह उनके जादुई व्यक्तित्व और मधुर व्यवहार का ही असर था कि समूचा सिने जगत उन्हें प्यार और सम्मान से शम्मी आंटी कहकर बुलाता था।
And she has been a leading actress playing the main female lead or second female lead in Hindi films between 1949 and 1955 as well. Later from 1986 till 1998, she appeared in many popular television serials such as Dekh Bhai Dekh, Zaban Sambhal Ke, Shriman Shrimati, Kabhi Ye Kabhi Wo and Filmi Chakkar. But here, dear listeners, we would want you to listen to this beautiful song sung by Shami and Johnny Walker in the movie Musafir Khana.
मेरा ना बन सके अगर अपना हो मैं बना के दे।
And today we are remembering Singa Nalluru Puttaswamiya Muthuraj, better known by his stage name Dr. Rajkumar, who was an Indian actor and singer who worked in Kannada cinema. Regarded as one of the greatest and versatile actors in the history of Indian cinema, he is considered a cultural icon and holds a matinee idol status in the Kannada diaspora, among whom he is popularly known as Nata Sarvabhauma or Emperor of Actors, Bangarada Manushya, Man of Gold, Varanata, Gifted Actor, Gana Gandharva, Celestial Singer, Rasikara Raja, King of Connoisseurs, Kannada Kantirava and Rajanna or Annavaru, elder brother Raj. He was honored with Padma Bhushan in 1983 and Dada Saheb Phalke Award in 1995. He is the only lead actor to win National Award for Playback Singing. His 39 movies have been remade 63 times in 9 languages by 34 actors, making him the first actor whose movies were remade more than 50 times and the first actor whose movies were remade in 9 languages. He was the first actor in India to enact a role which was based on James Bond in a full-fledged manner. The success of his movie Jadara Bale is credited to have widely inspired a Desi Bond genre in other film Indian film industries. On the occasion of the centenary of Indian cinema in April 2013, Forbes included his performance in Bangarada Manushya on its list of 25 greatest acting performances of Indian cinema. Upon his death, the New York Times had described him as one of the most popular movie stars of India. And very interesting here, Farhat. In the year 2000, he was kidnapped from his farmhouse at Gajanaur by Veerappan and was later released after 108 days. He died of cardiac arrest at his residence in Bangalore on 12th April 2006 at the age of 76. But here, we're going to listen to this beautiful Kannada hit song featured on Dr. Rajkumar.
ನಿನ್ನೆ ಕಾಡುವೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಆಡುವೆ
और अब हम बात कर रहे हैं जाने माने कन्नड़ साहित्यकार डी जयकांतन की। जयकांत की रचनाओं ने भारतीय समाज के हाशिए और दलित संप्रदायों से निर्वाह किया। उन्होंने लगभग 40 उपन्यास, 200 लघु कथाएं और 2 आत्मकथात्मक नोट्स की रचना की। अपनी कहानियों और उपन्यासों में वे मध्यम वर्ग और पक्षपंती वाले समुदाय के कई संघर्षों को संबोधित करते हैं। डी जयकांतन को अच्छी तरह से रूढ़िवादी समाज में चर्चा में नहीं आने वाले विवादास्पद और वर्जित विषयों के लिए जाना जाता है। उनकी लेखन शैली अविश्वसनीय रूप से अभी तक गहन रूप से घनी है। उनके काम दिल से बोलते हैं, आलोचना करते हैं और सामाजिक व्यवस्था और असमानता पर सवाल उठाते हैं। डी जयकांतन ने अनुवाद भी किया है। कैप्टन की बेटी रूसी लेखक अलेक्जेंडर पुष्किन द्वारा तमिल में एक ऐतिहासिक उपन्यास भी उन्होंने लिखा। उनकी कई छोटी कहानियों का सभी भारतीय भाषाओं, रूसी और अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है।
And today we are also remembering Mac Mohan, who was an Indian actor who worked in Hindi cinema. He is known for his villainous roles in films throughout the 1970s and 1980s. He appeared in over 200 films including Dawn, Kar, Satte Pe Satta, Zanzeer, Rafu Chakkar, Shaan, Khoon Paseena and Sholay.
जी, शोले की हम बात कर रहे हैं तो इस 3 घंटे 24 मिनट के इस फिल्म में सांभा ने एक ही बार में महज 3 शब्दों का इस्तेमाल किया था और इस पूरी फिल्म में उनका एक ही डायलॉग था जो काफी लोकप्रिय रहा। तो आइए सुन लेते हैं।
अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
पूरे 50,000।
सुना? पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
थिएटर के अलावा मैकमोहन ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एक्टिंग भी सीखी और अपने 46 साल के करियर में मैक ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।
जी बिल्कुल। Today is the birthday of Barbara Joanne Streisand, who is an American singer, actress, songwriter, film and television producer and director. With a career spanning over 6 decades, she has achieved success in multiple fields of entertainment and is among the few performers awarded an Emmy, Grammy, Oscar and Tony. Streisand's career began in the early 1960s when she started performing in nightclubs and Broadway theaters. Here we are going to listen to this beautiful song, Woman in Love, sung by Barbara Streisand. Her accolades include 2 Academy Awards, 10 Grammy Awards, including the Grammy Lifetime Achievement Award and the Grammy Legend Award, 5 Emmy Awards, 4 Peabody Awards, and the Presidential Medal of Freedom, the Screen Guild Actors Guild Lifetime Achievement Award, and 9 Golden Globes.
और श्रोताओं, आज हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कवि और निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर की भी पुण्यतिथि है। राष्ट्रकवि दिनकर आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। उनको राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रोत क्रांतिपूर्ण संघर्ष की प्रेरणा देने वाली ओजस्वी कविताओं के कारण असीम लोकप्रियता मिली। दिनकर ने इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की। साहित्य के रूप में उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन भी किया। रामधारी सिंह दिनकर साहित्य के वो सशक्त साक्षर हैं जिनकी कलम में दिनकर यानी सूर्य के समान चमक थी। उनकी कविताएं सिर्फ उनको समय का सूरज नहीं बल्कि उसकी रोशनी सी पीढ़ियां प्रकाशमान होती हैं। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता है, सदियों की ठंडी बुझी रात सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इखलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
And today we are also remembering Dinanath Mangeshkar, who was an Indian actor, a Natya Sangeet musician and a Hindustani classical vocalist who was active in Marathi theatre. He is also the father of well-known singers Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Meena Khadigar and Usha Mangeshkar, as well as composer Hridaynath Mangeshkar. Dinanath Mangeshkar started taking singing and Indian classical music lessons from Sri Baba Mashelkar at the age of 5. He was also to become a disciple of the Gwalior Gharana. In his youth, he also travelled to Bikaner and took formal training in classical music from Pandit Sukhdev Prasad, father of Pandit Mani Prasad of the Kirana Gharana. He joined the Kirloskar Sangeet Mandali at the Kirloskar Natak Mandali at the age of 11. Later, he left Kirloskar Mandali and formed Balwant Mandali with his friends Chintaman Ganesh Khalkotkar and Krishna Rao Kolhapure. Let's listen him here to Rag Shankara, sung by Master Dinanath Mangeshkar.
तो श्रोताओ, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर।
And stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thank you, dear listeners, for tuning in. Have a superb day.
नमस्कार।